तो को तुमने कर लिया। अब एक छोटी सी चीज़ जो सबसे पहले तो मेरे लिए और उसके बाद फिर हम में से हर उस बहन के लिए फ़ायदेमंद होगी कि जो मैरिड लाइफ गुजार रही हैं या वो बच्चियां जिनकी शादियां अभी नहीं हुई, तो कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं शादीशुदा ज़िंदगी के, कुछ कामयाबी के असूल। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम जानते तो होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो जब हमें एक एज़ अ रिमाइंडर ये चीज़ मिलती है तो फ़ायदा होता है। तो ये टॉपिक क्या है? शादीशुदा ज़िंदगी और ख़वातीन का किरदार। या फिर मैं इशारा कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन ही शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, पर एक औरत होने के नाते मुझे तो अपने किरदार देखना है। अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं शादीशुदा ज़िंदगी और मर्दों का किरदार, तो इसका नतीजा क्या होगा भला? आज रात को लड़ाई होगी, आप जाके कहेंगे हमने ये सुना वो सुना आपके बारे में। हाँ, अल्लाह करे कि मर्दों को मर्द मर्द बनना सिखाएं। मैं तो औरतों को अच्छी बीवी बनना सिखा सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें फ़ायदे की हैं हमारे के लिए, पढ़ के सुनाती हूँ आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको इंशाल्लाह बात समझ आएगी। जैसे किसी नदी में पत्थर फेंका जाए तो इर्तियाश पैदा होता है, लेयर्स बनती है ना, लहरें उठती हैं पत्थर फेंक के किसी पानी में, इसी तरह घरेलू ज़िंदगी में जब मसाइल पैदा हों तो इनका रिपल इफ़ेक्ट बहुत दूर तक जाता है। रिपल क्या होता है? जैसे आप एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो एक दायरा, फिर दायरे दायरे बनते हैं ना, जितना दूर जाते जाएं वो दायरे फिर पतले होते जाते हैं, उसको रिपल। यानी आपकी मेरी ज़िंदगी जो भी गुजर रही है ना, हर अमल का, चाहे वो शौहर बीवी के अच्छे ताल्लुकात हों या बुरे, या घर में किसी एक फ़र्द का कोई इशू हो, उसका असर ज़रूर आता है। ये नहीं आप कह सकते कि कुछ भी हो लेकिन हमारी ज़िंदगी पे इसका असर नहीं पड़ता। खुशगवार घरेलू ज़िंदगी के लिए सभी को अपनी अपनी जगह कोशिश करनी होगी, ये जुमला याद रखें। लेकिन चूंकि दूसरों को बदलना आसान नहीं, तो आइए खुद में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाएं जिनसे घर में सुकून और खुशियां पैदा हों। हम चाहते हैं ना हम सबका घर अच्छा रहे। और ये बात मेरी सुनते हो ये मत सोचिएगा कि ये तो नई नई नवेली शादियों वालों के लिए है। क्यों, आप दुनिया से जाते जाते क्यों नहीं एक खुशगवार घरेलू ज़िंदगी का मज़ा चख सकते? हमारा हक है। अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 15 हुए हैं, 20 हो गए हैं, कोई इतनी मज़े की नहीं गुजरी, लग रहा है कि बस वक्त गुजार रहे हैं, तो आज से इन चीज़ों को अपने लिए एक मेयार बनाएं, एक एक करके फ़ायदा उठाइए। तो टिप्स में से पहली टिप, शौहर जब घर से बाहर कदम रखते हैं तो रास्ते में बिल बोर्ड्स पर मुस्कुराती लड़कियों पर नज़र पड़ती है। ऑफिस दाखिल होते ही रिसेप्शन से एक मुस्कुराता व सलाम इस्तकबाल करता है। सारा दिन सजी समरी खुश अखलाकी का मुजाहरा करती कुलीग्स के साथ गुजरता है। फेसबुक ऑन करें तो वहाँ भी मुस्कुराहटें। लेकिन घर के अंदर आते ही बीवी पर नज़र पड़ती है जो किसी और ही काम में मशगूल, दूर से ही सलाम कर देती है। वो हंसवा करें, जब हस्बैंड घर आते हैं तो दूर से बस सलाम करती हूँ। मुस्कुराहट तो दूर की बात, पास भी कम ही आती है। अगर ऐसे हालात हैं, और कोई माने ना माने, आम तौर पे घरेलू हालात कुछ इसी किस्म के होते हैं कि हम शौहरों के आने पर, यानी शौहरों के घर आने पर उनका वार्म वेलकम नहीं करते, खुशी से उनका इस्तकबाल नहीं करते। हो सकता है कोई मेहमान 3 माह बाद आए हमारे घर, तो हम उसका इस्तकबाल ज़्यादा अच्छा करें हर रोज़ अपने शौहर के आने की निस्बत, क्योंकि ये तो रोज़ ही आते हैं, खैर से मेहमान तो कभी आते हैं, लेकिन ये सोचें कि शौहर से ज़्यादा मामलात हैं या मेहमानों से, दोस्तों से वेलकम कैसा है। तो ये भी चीज़ अपने अंदर तब्दीली लाने वाली है। तो सबसे पहली तब्दीली तो ये लेकर आनी है कि मियाँ को अच्छे तरीके से वेलकम करें। नहीं भी दिल कर रहा, इस नहीं पे गौर कर लें, नहीं भी दिल कर रहा तो सुन्नत नबवी समझ कर मुस्कुरा दें, सदका समझ कर मुस्कुरा दें। ये बड़ा वैसे कलमिया है कि लोगों का अपने शौहर को देखकर या शौहरों का अपनी बीवियों को देखकर मुस्कुराना, वेलकम करना, आई लव यू कहना, अब मुश्किल से मुश्किल काम होता जा रहा है। ऐसे ही है, सुभान अल्लाह। चलिए दूसरी चीज़ ये कि शौहर के आने से 10 मिनट पहले खुद को फ्रेशन अप करें, शावर का टाइम नहीं तो कपड़े बदल लें, ताकि भुने मसाले और लहसुन के तड़के की बू आपसे ना रही हो, वरना उनको भी तड़का लग जाएगा। नेचुरल सी लिपस्टिक, काजल, हल्का सा परफ्यूम, बस इतना ही। दूसरे से ज़्यादा आपको खुद अपना आप इतना अच्छा लगेगा कि मुस्कुराना मज़ीद आसान हो जाएगा। करेंगे इस पे अमल? अब ये नहीं कि स्मोकी मेकअप कर लें तो वो डर के भाग जाए। मेकअप भी वो करेंगे जिसको देखकर अगला भी दिल पे हाथ रख ले कि बर्दाश्त वाला है। बहरहाल, और आप देखते हैं कि जब आप खुद नहा धो के साफ सुथरे होते हैं तो वाकई मुस्कुराना आसान हो जाता है। थके, घबराए, परेशान है तो वाकई मुस्कुराहट नहीं आती। आप कहते मैं किस बात पे मुस्कुराऊँ, थकी हुई हूँ, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत पहले किसी ने कहा था कि बीवी को मोहब्बत और शौहर को इज्जत चाहिए होती है, ये मिलती रहे तो शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। मुझे ये लगता है कि दोनों को दोनों ही चीज़ें चाहिए, बीवी को भी इज्जत मिलनी चाहिए और शौहर से भी मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। ऐसे ही है ना? और इस पे मैंने एक 5 मिनट का सेशन कहीं दिया था कि अगर आपसे कोई दो लफ्ज़ों में पूछे शौहर बीवी से क्या चाहता है और बीवी शौहर से क्या चाहती है, तो उसमें ये दो पॉइंट है। माने ना माने शौहर को इज्जत चाहिए, और आप माने ना माने बीवी को मोहब्बत, बल्कि बार बार मोहब्बत का इजहार चाहिए होता है। औरत के मिजाज में मोहब्बत है, उसको वो जो बात बार बार भूल जाती है वो ये है कि आई लव यू। हर दफ़ा वो कहती है डू यू लव मी, वो कहेगा बेगम आपको पिछले महीने भी कहा था। अच्छा रियली आई डोंट नो, अरे आपको तो कल कहा था। अच्छा वाकई मुझे तो याद ही नहीं। तो अच्छे शौहर सुबह शाम बीवी को कह दें आई लव यू तो मुतमईन हो जाएगी, और शौहर को आप सुबह शाम क्या करें, वो जो एक दफ़ा इज्जत दी थी तो अब हर दिन देना शुरू कर दें। उनको इज्जत दें, रिस्पेक्टफुली बुलाएं, क्या कहने में रिस्पेक्ट है। सरताज, मुन्ने के अब्बा, पहले दौर में औरतें नाम नहीं लेती थी, और आप माशाल्लाह नाम लेती भी ऐसे जैसे छोटे भाई का नाम है, पता ही नहीं चलता काफ़ी देर के ये मियाँ का नाम ले रही थी इतनी देर से। तो इज्जत से बुलाएं, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह ताला। शौहर को इज्जत भी दें और मोहब्बत भी। इसको खाना दे देना, कपड़े इस्त्री कर देना काफ़ी नहीं, आगे बढ़कर और खुलकर मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कैसे कैसे मोहब्बत का इजहार किया जाए, एक तो ये है कि बग़ैर वजह के यस आई लव यू ऑलवेज विल नथिंग जस्ट थॉट ऑफ टू रिमाइंड आई लव यू की तरह के मैसेज कर दें, यानी मैसेज कर दें। मुश्किल है स्पेलिंग में बोल दूं, आप तो लोग लव की जगह दिल ही बना के भेज देंगे, लेकिन इतना मुश्किल लगता है। कल मैंने औरतों को मुश्किल में डाल दिया था, आप मुझे फ्लावर्स दिए लोगों ने, देते हैं हमेशा, तो हमेशा ही कहीं जाऊँ तो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो जो फ्लावर्स देते हैं तो फिर मेरा दिल होता है कि ये फ्लावर्स जिन्होंने ख़रीदे हैं अब इनका कुछ सदका जारिया बने। तो मैंने अनाउंस किया कल ज़ुरख में, मैंने कहा कि जिन्होंने दिए मैंने ले लिए, कबूल किए, बहुत प्यारे हैं, नाइस, जजाकल्ला खैर। अब अगर मैं ये साथ ले जाऊंगी तो रास्ते में मुरझा जाएंगे, छोड़ जाऊंगी इधर तो जिनके पास मैं ठहर रही हूँ उनकी मौज हो जाएगी। तो अगर मैं इसको आपको ऑफ़र करूं कि आप में से जो सिस्टर इसको कुछ भी सदके में डालकर ले जाएं, तो जिन्होंने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं ये सदका उनकी तरफ से भी होगा, आप तो दे ही रही हैं, और मेरी तरफ से भी होगा क्योंकि मेरे हैं ये, तो आप ले लीजिए। खैर बहुत लोग खुशी से लेने वाले बन जाते हैं, बल्कि बाद फूलों से 4 गुना ज़्यादा पैसे स्कूल को आ जाते हैं। तो कल मैंने एक ज़रा ज़्यादा ही बात कह दी, मैंने कहा आप ऐसा कर लें कि ले लें, वैसे काफ़ी बड़ा बके था, तो मैंने कहा अगर आप और भी नेकी करना चाहती हैं तो आप ख़रीदने के बाद इसको खोलें और एक एक फूल हर मैरिड सिस्टर को दे दें, कि आज घर जाकर अपने हस्बैंड को दे दें कि हम 3 घंटे से इधर बैठे हैं, कोई गुस्सा गिला है दूर हो जाए, तो आपकी तरफ से ये सब घरों में मुस्कुराहट का पैगाम चला जाएगा। यहाँ तक तो सारे खुश थे, पर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा लेकिन जिन बहनों को अब ये फ्री में मिल रहे हैं तो उनको एक काम करना होगा, अपने हस्बैंड को ये देते हुए कहना है आई लव यू। सब ने हाथ वापस कर लिए, ऐसे ही नहीं लेना। इतने बेचारे मस्कीन शौहर हैं आजकल हमारे। और सेम यही रेपिटेशन मैंने बाद में देखी सर के साथ, उनका भी दर्द था, उनको भी किसी ने फूल दिए तो वो ले के ऊपर उठा के आ रहे हैं, मैंने उनको भी मत दी, मैंने कहा आप जाएं नीचे ब्रदर्स को दे दें कि एक एक कागज अपनी बेगमों को देना। ये तो खुशी खुशी वापस गए, ब्रदर्स को दूं, आ ही नहीं रहे, आ नहीं रहे। जब आने गई तो देखा तो बच्चों में बांट रहे हैं, कहते ब्रदर्स ले ही नहीं रहे इस बात पे कि बीवियों को दे दें। तो अगर हम ये कहते दूसरे की बीवी को दे दो, भाभी को दे दो, तो फिर, लेकिन याद रखिए आप इन चीज़ों को कि हमेशा इजहार करें जज्बों का। हर मर्द में कहते हैं एक बच्चा होता है, और हर औरत में भी बच्ची होती है, तो ये छोटे छोटे इजहार के जुमले अच्छे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि अब हर खाने के साथ आई लव यू लिख दें, तो आदत हो जाएगी। तो कभी जब दिल खुश हो, जब भी कोई अच्छी चीज़ हो, तो ऐसे मैसेजेस ज़रूर दीजिए हल्के फुल्के से। और कभी भी लव यू टू की तवक्को ना रखें, ये भी एक इशू है। उनका जवाब क्यों नहीं आया आई लव यू का, भाई इसका जवाब क्या है, भाई आई लव यू टू, वो टू कह दें फिर कहना ठीक है। तो उम्मीद ना रखें, जवाब आ जाए तो अच्छी बात, ना भी आए तो गुमान रखें कि दिल पर कहीं ना कहीं असर कर दिया होगा। मैंने ये मानती, लोग कहते हैं हमारे मियाँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो अच्छे कपड़े पहन लो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, तैयार हो जाओ फिर भी नहीं पड़ता, ये कभी नहीं हो सकता। वो बताते नहीं है फ़र्क उनको भी पड़ता है, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, फ़र्क पड़ता है। और याद रखिए कि उनको फ़र्क पड़े ना पड़े, आपको फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा नेकी करें बगैर किसी सिले की उम्मीद के। चलें, ये काम कितने करेंगे आप में से, अल्लाह हो कर, थोड़े सही हैं, दो हाथ से करेंगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा काम ये करें, अब ये बड़ा अहम काम है, दूसरा काम अच्छी बीवी के नाते आप खुद या अपनी बच्चियों को सिखाएं, लंच बॉक्स के अंदर एक छोटा सा नोट लिख कर रख दिया करें। नोट नहीं रखना, नोट लिख के रखना है। आप कहेंगे मियाँ को नोट दें, हम तो उनसे लेते हुए लड़ते हैं। क्या नोट पे लिखेंगी? चंद अल्फाज जो आपके गैर मौजूदगी में भी आपके होने का एहसास दिलाएं। अगर खुद लिखना ना समझ आए तो लंच नोट्स फॉर हस्बैंड सर्च करके आइडियाज़ ले लें। गूगल ये भी नेकी करता है, आपको पता है। शोहर के एक्नॉलेज करने की तवक्को ना रखें, यानी खाना जब उनके लिए पैक करें ना, उसमें कुछ भी रख दें। मैंने इस पे पहले भी बड़ी बातें की हैं, अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना इसी तरह 60 टिप्स टू प्लीज हस्बैंड, नाम नूरुल कुरान का, शायद मेरा भी लिख के देखें, बहुत सारे लोग उसका फीडबैक देते हैं, और मेरे लिए लाखों लोग सुन चुके हैं उस लेक्चर को, कि अपने शोहर को खुश रखने के 60 तरीके। तो उसमें मुझे याद आया कि एक ये बताया था कि लंच बॉक्स जब रखें ना, तो उसके अंदर कोई अनयूजल चीज़ रख दें, कभी फूल रख दिया, कभी जॉली है तो लॉलीपॉप रख दें। यानी शौहर बीवी के ताल्लुक में वो हर वक्त खिंचातनी नहीं होनी चाहिए, गुस्सा गुस्सा और चिड़े चिड़े लाड़, यानी आप नहीं हैं उस वक्त, ऐसी कोई चीज़ रखें कि उनको आप पे प्यार आ जाए, ये चीज़ फिर उनको इंशाल्लाह जल्दी घर लाएगी। और हम कहते हैं कि मेरे अलावा इनको हर एक ही अच्छा लगता है, तो अपने अंदर भी तो हमें कोई कशिश पैदा करनी है ना इंशाल्लाह। फिर ये तो थे फौरी करने के आसान काम, अब आएँ कुछ ऐसी आदतों की तरफ जिनसे शौहर सख्त कोफ्त खाते हैं और औरतें बिल्कुल बास नहीं आती। ये कोफ्त है, कोफ्ते नहीं, यानी हमारी कुछ ख्वातीन की आदत ऐसी होती है, मर्दों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन चूंकि हम औरत हैं तो हमारे अंदर हैं, तो डिस्कवर कर लें ताकि फिर दूर कर लें। एक बच्ची थी, उसकी नई नई शादी हुई, तो मियाँ के किसी रवैये पे कहेंगी साहब मियाँ ऐसे क्यों होते हैं? मैंने कहा इसलिए कि उन्होंने हमारे साथ रहना होता है, हमारे साथ रहने के लिए उनको ऐसा होना पड़ेगा, वरना हम पता नहीं उनका क्या हाल कर दें। तो बस दफ़ा औरतों में कुछ इरीटेटिंग आदत होती हैं, उनमें से क्या है? नंबर एक, अब ये मुहासबा मेरा भी अपने लिए और आपका अपने लिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर वक्त ताने देना। मर्द को ये कहना आप तो बस ऐसे ही हैं, आप तो मेरी साइड नहीं लेते, फलां तो ऐसा है, यानी बस ख्वातीन गैर महसूस तरीके से ताने देती हैं। छोटी मोटी बातों को जाने दिया करें, हर बात पर महाज खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, हाँ जो ज़रूरी हो इस पर बेतुकान बोलने से पहले दिमाग में सोच लें कि आप मसले पर मुझे मियाँ से बात करनी है, क्या कहना है, अल्फाज भी सोच लें, फिर बात करने से पहले रब्बी इशरह ली वाली दुआ पढ़ लें और फिर इनसे बात करें। बात समझ गए? अपनी आदत को खुद नोट करें और उसको लिखें। पिक योर बैटल्स, यानी खुद देखें कि मेरा किरदार क्या है जंग में। कोशिश पूरी करें कि ससुराल को ज़्यादा डिस्कस ना करें, ये तो मैं आपको कहती हूँ दिल की तख्ती पे लिख लें। हर बच्ची जिसकी शादी होने वाली है, जो हुई, मैं उसको ये नसीहत ज़रूर करती हूँ, कभी अपने शौहर के सामने उसकी माँ बहन घर वालों की बुराई ना करिएगा। सोचती औरतें ये हैं कि इससे हमसे वो बड़ा प्यार करेगा, नहीं, नफ़रतें दे के मोहब्बत नहीं मिलती, ये तो सूरह यूसुफ ने भी सिखा दिया। शौहर के घर वालों से प्यार करें, आप शौहर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं भी करेंगे, देखेगा कैसे वो आपसे मोहब्बत करेगा। जैसे आपको आपके माँ बाप भाई बहन अजीज़ हैं, इसी तरह उसे उसके प्यारे अजीज़ हैं। ससुराल को लेकर ख्वातीन को अमूमन दो ही मसाइल होते हैं, पैसा इधर लुटाते हैं या मोहब्बतें वहाँ लुटाते हैं। यानी बीवियां अपने शोहरों को अपनी माँ और अपने भाई बहनों पे भी नहीं खर्च करने देती, कहाँ किसी और से लेना। अपने आप को ये समझाएं कि रिस्क अल्लाह की देन है, वो इन्हीं लोगों के नसीब का अल्लाह ने मेरे शोहर को दिया होगा। अगर आप इस बात पर झगड़ेंगी, देगा तो वो फिर भी, लेकिन आपको पता नहीं लगने देगा, फिर छुपा के देगा। और आपका मेरा इख्तियार क्या अपने शोहर के माल पे? सोचिए, ससुराल में भी बुरी मशहूर होंगी, शोहर के दिल से इज्जत भी गई, हालांकि जो आपके नसीब का है वो तो अल्लाह ताला आपको दो पहाड़ों के दरमियान से भी अता कर देंगे, फिर झगड़ा काहे का। और रही बात मोहब्बतों की, याद रखें, अगर शोहर के दिल में जगह बनानी है तो इसे इसके प्यारों से मोहब्बत करने पर ना टोकें। मोहब्बत भी अल्लाह ताला ही दिल में डालते हैं, आपके ज़ोर ज़बरदस्ती से तो आप अपना रहा सहा मुकाम भी खो देंगी। हाँ, शोहर से हर तरीके से मोहब्बत का इजहार करती रहें तो वो सब पलट कर वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला। बात वाज़ेह, ताने नहीं देने और ससुराल को बुरा नहीं कहना। इसी तरह एक ही बात की बार बार तकरार करना, ये भी ख़वातीन का पसंदीदा शुगल होता है। फिर भी कहती हैं बात समझ आ गई है, फिर दोहरा दूँ, वो जूते पहन रहे हैं तो फिर आप ये कह रही हैं, गाड़ी में मैं पीछे से भी आवाज़ लगा रही हैं, फिर कहती नहीं लगता समझ नहीं है, टेक्स्ट मैसेज भी कर दूँ, नहीं मैसेज नहीं पड़ा होगा, ज़रा फ़ोन भी कर लूँ, वो उधर बेचारे किसी कुलीग के साथ या किसी क्लाइंट से बैठे हैं और आप उनको कह रही हैं वो दूध की बोतल ले आइएगा। इतनी दफ़ा एक बात को नहीं दोहराना चाहिए, ना ही कई साल पहले की बातों का बार बार तذکرہ किया जाए। मैं ये नहीं कहती कि कम्युनिकेशन गैप हो और कभी इससे अपने जज्बात और एहसासात के इजहार ही ना करें, लेकिन बात यह है कि ज़्यादा चीज़ों को कबूल कर लें, कुछ चीज़ों पे स्टैंड लें जो वाकई इस काबिल हों, अल्फाज भी मुनासिब इस्तेमाल करें, ये भी एक बड़ी बात है। और बिलीव मी, अपने आप को क्रिटिकल देखेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मुझे अपनी बातें जो शौहर से करती हूँ उसमें खामियाँ दिखेंगी, टोन बदल जाती है, अंदाज क्रिटिकल होता है। और हम कहते हैं ना, अच्छा मैं नहीं अब आपसे शिकवा करूँगी, उसमें भी हम शिकवा ही कर रहे होते हैं। तो शौहर के साथ जितने न्यूट्रल रहें, अच्छे तरीके से रहें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ लहजा भी बेइज्जती करने वाला ना हो, और दोनों इस बात को डिस्कस कर लें। शौहर का आपकी बात से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, लेकिन आप कह दीजिए, क्योंकि कहे बगैर दिल का हाल सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, शौहर के मिजाज की वजह से अगर बात करना मुश्किल लगे तो मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बात लिख कर कह दीजिए, ईमेल या टेक्स्ट भी किया जा सकता है। फिर एक और बुरी आदत है जो आज के दौर में ज़्यादा आम हो गई, जबकि कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत बढ़ गए, और वो क्या, हर हर बात अपने घर वालों तक फौरी पहुंचाने की आदत। बेटी होती है सात समंदर पार, माँ बेचारी रात है उधर दिन है, और ये बैठ के टिक 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 उससे गाइडलाइन दे रही है, अब ये कर दिया, अब ये कह दिया। देखिए, आप इधर इस क्लासरूम में बैठे हैं ना इस वक्त, अगर इस वक्त इस छोटे से क्लासरूम से सिर्फ आप बाहर नीचे ही सोच लें बच्चे क्या कर रहे हैं, पता नहीं कैंटीन में क्या हो रहा है, तो क्या आप ये सीख सकेंगी? आप यहाँ होते हुए भी नीचे हैं तो कहाँ सात समंदर पार, और माँ आपको वहाँ बैठ के मशवरे दे रही है, अब ये कर लो वो कर लो, पता नहीं माँ को तो हालात भी नहीं पता आपके घर के, तो अपनी बच्चियों को इसकी आदत डालें, कभी आपसे अपने घर की बातें शेयर ना करें। हाँ, अगर ये लगे कि हालात हाथ से निकले जा रहे हैं तो ऐसे में अपने बड़ों को साथ शामिल कीजिए, उनकी दुआ बाज़ुकात वो करिश्मे करती है जो हमारी हर कोशिश मिलकर नहीं कर पाती, तो हर वक्त की बातें अच्छी नहीं होती। एक अहम, बहुत अहम बात, फेसबुक पर देख देख कर या ख्वातीन के बताने पर ये फ़ैसला ना करें कि फ़लाँ का शौहर बहुत अच्छा है, इसको घुमाता फिराता है, महंगे तहाइफ लेकर देता है, इसके घर की परेशानियाँ आपको मालूम नहीं। अपने शौहर का दूसरों के शौहर के साथ मवाजना करके अपनी और शौहर की ज़िंदगी मुश्किल ना बनाएं। ऐन मुमकिन है कि उसका शौहर घर में काम में उसकी कोई मदद ना करता हो, इसको महके वालों से ना मिलने देता हो, छोटी छोटी बात पर बेइज्जती कर देता हो, लेकिन आपसे ये बातें छुपी हुई हैं, ना तो खुद मवासना करें ना शौहर को कोई ऐसी बात जतलाएं। ये भी एक बात बहुत आज के दौर का नासूर है, ये फेसबुक और इससे भी आगे की अब चीज़ें और जो स्नैपशॉट्स हैं, इन्होंने घरों में जेलसी पैदा कर दी। आप गए कहीं, हो सकता है सारा रसा लड़ते ही गए, और वहाँ जाके आपने एक स्नैपशॉट लिया, मैं अपने शौहर के साथ इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, बस वो स्नैपशॉट जो लाखों लोगों के दिलों में एक चिंगारी डालेगा, मेरा शौहर नहीं मुझे लेके जाता। लोगों को नहीं पता आप कितने थके हुए हैं, आप कितने परेशान हैं, झगड़ रहे हैं, लोग आपसे रश करेंगे। कभी अपनी नेमतों को ऐसे एक्सपोज ना करें। और आज तो आम लोग बड़ी गाड़ी में बैठे हैं तो तस्वीरें खींच के दूसरों को भेज रहे हैं, भी अगले को क्या लगे, पिज़्ज़ा घर में आए पहले कहते थे खाओ, अब क्या कहते हैं दिखाओ। अब जिसको आपने पिज़्ज़े की तस्वीर भेजी, यकीन से बताइए, चलो पिज़्ज़ा तो बाहर की चीज़ है, आपने बेहतरीन चीज़ अपने घर में बनाई आज, देख के खूबसूरत लग रही है। खाने की अभी गरीबों को इजाज़त नहीं है क्योंकि अभी डिस्प्ले हो रहा है। वो किसी के घर में गई हुई थी तो एकदम शोर हुआ, दादी के, अरे 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 ये किधर लेके जा रहे हो, ये है वो है मेहमानों के लिए, दादी बोल उठी। पोता कहता है, दादू मैं तो सिर्फ तस्वीर बनाने लगा था मेहमानों के लिए, उसने कोई केक शेक बनाया हुआ था तो वो बच्चा उसकी तस्वीर खींचने लगा, दादी समझी ये खाने लगा है, तो वो चीख उठा के, नहीं मैं तो सिर्फ तस्वीर बनाऊंगा। अब आप देखिए बेहतरीन खाने की तस्वीर गई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो फैमिली ग्रुप है, चलें कम से कम तो आप अपनों को जलाते हैं ना, ज़्यादा चलाएंगे तो और पे, और इंस्टेंटली चलाएंगे तो हो सकता है अगले के घर आज रोटी नहीं पकी, आज हो सकता है दाल पकी हुई है, पहले ही झगड़ा चल रहा है कि मैंने कद्दू नहीं खाना, अब क्या हुआ ऊबर से चला गया आपका पका हुआ मज़े का खाना, झगड़ा होगा, खाइए इंजॉय कीजिए, वंस अ वाइल को बड़ी अनयूजल बड़ी अच्छी चीज़ लगी शेयर कर दीजिए, हर वक्त हर खाने की तस्वीर है और इससे भी घर टूट रहे हैं, और मैं इस पर एक पूरा लेक्चर दे भी चुकी हूँ और मुझे लगता है अभी और 10 लेक्चर देने की ज़रूरत है कि आज के दौर में बच्चियाँ क्यों नहीं बस पाती या शौहर क्यों नहीं रख पाते उसमें मीडिया और नेट के असरात। यकीन करें ये देखिए ये मेरे हाथ में, आप देखिए पहले दौर का, आज से 10 साल पहले का बंदा मेरे हाथ में ऐसे कोई देखता ना तो वो सोचता खुदा ना खास्ता ये कोई आला है, डॉक्टर ने कहा इसको हर वक्त हाथ में रखो, ये कोई इसके दिल की धड़कन चला रहा है या ये कोई इसका कह लीजिए ऑक्सीजन मास्क है। आज ऐसे हाथों में फ़ोन होते हैं बच्चियों के, मैंने यकीन से देखा ट्रे पकड़ रही है उसमें चीज़ें इतनी हैं, इसको नहीं छोड़ रही हाथ से, यकीन करें आप खुद देखिएगा, दिमाग इधर दिल इधर, खाना खाते उधर बात बात करते, इधर माँ बुला रही है, इधर शौहर बुला रहा है, इधर बच्चे रो रहे हैं, वो इसको पकड़े, इसको मैं कहती हूँ छुपा दें। और मुझे एक बच्ची की बात बड़ी अच्छी लगी, शादी हुई उसकी, जैसे भी घर होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब जैसे पहले लोग फ़ोन करते हैं बताते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में है भाई किधर हैं आप सुन नहीं रही हैं आजकल आपका हैंड नहीं रेज होता, कहने लगी मैंने शादी से लेके 6 माह तक नियत की कि मैंने अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना। बिलीव मी बच्ची को अपने घर में सेट होने दें, आप अपनी बच्चियों को फ़ोन कभी तोहफों में ना दें, मैं ये नहीं कह रही कि फ़ोन ना हो, अगर यूज़ करना आता है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर सारा दिन इसी के ऊपर बैठे हैं तो सासें आज कहती ही हैं फ़ोन की जान नहीं छोड़ती। और देखे ना अब आप और मैं दो बैठे हैं कमरे में, मैं आपसे तो बात कोई नहीं कर रही इतनी खुश, और उस पर चिड़चिड़ कर तो माँ क्या सोचेगी ये मेरी बातें किसी को बता रही, कुछ भी हो रहा है टिक 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 टिक, इससे घर ख़राब हो रहे हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये मेरी आपकी तो छोटी छोटी कोशिशें हैं ना, सबसे बढ़कर आप चाहती हैं आप अच्छी बीवी बने घर का सुकून हो तो खुले दिल से सदका करें, सदके से बलाएं टलती हैं, शौहर का गुस्सा टलेगा, घर में जो फितने हैं वो टलेंगे, झगड़े होंगे, और साथ ही साथ दुआएं करें और कबूलियत के औकात में दुआएं करें। शैतान का पसंदीदा काम है शौहर बीवी के बीच में झगड़ा कराना, शैतान को भगाना है सूरत बकरा की तिलावत करें, आखिरी आयतें पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, क्योंकि जहां सूरत बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है, और आप देखिए कि 5 वक्त की नमाज और रोज़े का अहतमाम, जितनी आपके अंदर नेकी आती जाएगी अल्लाह खुद दूसरों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। हम आज अपनी बेटियों को सिखाते हैं, पहले तो सिखाते थे अब तो शायद वो भी ख़त्म है, शादी होती थी ना तो उससे पहले क्या था इसको चाइनीज़ सिखाओ, ये वहाँ जाके मज़े मज़े के खाने खिलाकर दिल में जगह बना लेगी, मिक्रामे बनाने सिखाओ, और पता नहीं क्या कुछ लड़कियाँ स्किल्स लेती थी आज भी लेती होंगी कितने पैसे लगा लगा के। आप अपनी बच्ची को 10 गुण सिखाते जिसमें ए टू जी हाउस होल्ड है, खाना पकाना सिखाएं, कपड़े सीने सिखाएं, सब सिखाएं, लेकिन अगर आपने उसको लितस्कुनु इलैहा नहीं सिखाया कामयाबी शर्त नहीं है, स्माइल करना नहीं सिखाया कामयाबी शर्त नहीं है, मट्टी वाला मिजाज बनना नहीं सिखाया, फॉरगे फॉरगेट नहीं सिखाया, कोई नहीं पता ये बच्ची घर में बसेगी कि नहीं बसेगी, और कुरान को निकाल दें ज़िंदगी से अपनी बच्चियों की, सर से पाँव तक उनको सोने चांदी से लाद के भेजें और सारे काम सिखा के अपनी घरेलू काम करती बच्ची भेजिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि रिस्क है। अगर आप और मैं अपनी बच्चों की दीन की तालीम से गाफिल होकर उनको सिर्फ दुनिया इसलिए सिखा रहे हैं कि ये फिर अच्छे घर बनाएंगी, अच्छे घर तो बसते ही कब हैं जब दीन साथ होता है, जब रिश्तों का मेयार दीन होता है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शौहर बीवी का ताल्लुक इतना मजबूत और इज्जत वाला और मोहब्बत वाला कर दे कि शैतान का हर वार खाली हो जाए। अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसान करे। एक आधा सवाल आया हुआ है मेरे सामने, ये लिखती हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का क्वेश्चन है, यानी जहाँ सब मिलके रहते हैं, दो तीन भाई हैं, देवर जेठ और यानी एक माँ है और उसके सारे बच्चे साथ हैं, बेटे ख़ास तौर पे। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि देवर वगैरह घर आ जाते हैं, एहतियात के बावजूद बेपर्दगी होती है, क्योंकि आम तौर पर हम घर का काम करते हुए दुपट्टा ज़रा ढीला ही कर देते हैं। और दूसरा ये कि मेरे शौहर चाहते हैं कि सच संवर कर रहना चाहिए, मगर इन हालात में देवर जेठ की मौजूदगी 24 घंटे की, इसमें अजीब लगता है। फिर इनको लगता है कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। सो मैं क्या करूँ इन हालात में? देखिए, ये एक सवाल एक औरत का नहीं है, ये बहुत सारे घरानों का इशू है। हमारे कल्चर में अमूमन जॉइंट फैमिली सिस्टम का नाम लेकर बहुओं बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया जाता है। तो इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा हमने और भी जगह बात की हुई है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतना सा बता दूँ कि अगर एक जगह रहना ज़रूरी है, कोई हरज नहीं, कोई बुराई नहीं, लेकिन लिमिट्स के साथ। अगर घर में देवर जेठ भी हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इस घर में एक गैर महरम भाभी भी है, किचन में आप काम कर रही हैं। हकीकी बात है, दुपट्टा लेके काम नहीं होता, आप रिलैक्स रहो। लेकिन फिर घर के मर्दों की तरबियत हो कि वो नौकर करें, और आप खुद नहीं कर सकती हैं तो घर की माँ सास जो है उनके ज़रिए अच्छे तरीके से बात की जा सकती है कि जब भी कमरे में आए, किचन में आए तो नौकर करें, खुलेआम नहीं आएंगे। और कमरों के अंदर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन घरानों में समझ होती है वहाँ ये सारा कुछ पर्दे के साथ भी होता है। रहेगी बात शौहर के साथ बनना ठनना, तो ये मर्द का हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर उसका वही तरीका है कि आप अपने कामों को एक ख़ास वक्त के साथ समेट लें, निपटा लें। जब शौहर के आने का वक्त है, जब शौहर है घर पे, तो आप साफ़ सुथरे बने और खाना लेकर शौहर के साथ अपने कमरे में खा लीजिए। फिर सासों को भी दिल बड़े करने चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक औरत का ये हक बनता है कि मर्द उसको अलग रहने की जगह दे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं अलग घर दें, अफोर्ड नहीं कर सकते एक घर में से कोना उसके लिए अलग कर दें, किचन बना दें, वो भी नहीं कर सकते, तो एक कमरा तो उसका हक है। अब उस कमरे के अंदर मुंह उठा के चल पड़ना, रात दिन का फ़र्क और बग़ैर मौजूदगी में उनकी कमरे की चीज़ों को देखना, ये अच्छी सासों और अच्छे घर वालों का अमल नहीं होता। इस्लाम तो इसको वैसे ही जायज़ नहीं करार देता। तो फिर लिमिट्स के साथ रहें, फिर इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उनको आते हुए चाय भी पूछनी है। आपके घर में आप भाभी हैं, एक भाभी काम कर रही, दूसरी, आप बना के मुहज़ब अंदाज से रख दें, वो अपने मर्दों को सर्व करें, आप अपनों को करें। और इसके कई तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे प्रैक्टिकली बहुत लंबी बात की हुई है, आप अगर सुने कहीं ना आयतों की तफसीर में या कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहने के क्या तरीके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे घरों का रुख बदले। और ये अभी इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे मुआशरे का ये रुख ही नहीं है। सच्ची बताऊँ, सबसे ज़्यादा लोग माइंड करते हैं जब आप अपने घर आए मर्दों से पर्दा करें। बाहर वाले तो कम एतराज़ करते हैं आपके निकाब पे, उनको क्या लगे, घरों में ज़्यादा एतराज़ है। आप करके देखिए, आपकी सास ही कहेंगी क्यों मेरे बेटे चोर हैं, वो डाकू हैं, वो तो भाभी समझते हैं, वो तो माँ समझते हैं। तो क्या फिर अबू बकर, अनस और उमर, उनकी नज़रें पाक नहीं थी? इसके लिए चेंज लाते हुए टाइम लगेगा। जिस हद तक बाखलाक रहते हुए अपनी डिग्निटी के साथ रहिए, सास को मियाँ के थ्रू बता दें, खुद बता दें कि मेरी ये लिमिट्स हैं, मैं इस तरह रहूँगी, और आपका पूरा हक बनता है एज अ बहू घर वालों की खिदमत करने का, लेकिन आप अपने दीन को उनकी वजह से नहीं बिगाड़ेंगी। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है घरों में सुकून दे, इत्मीनान दे। ये चेकलिस्ट खोल लीजिए जो आखिर में इस सबक के हमारे सामने है, पेज 102 है। पूरे सबक का खुलासा कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन के साथ सुना हो। तो हमारा आज का टॉपिक था घर का सुकून। पुरसकून घर जन्नत है, अल्लाह हम सब के घरों में सुकून दे। इसमें पहला नुक्ता था इंसानी ख़ानदान का, 4 पॉइंट्स देखे हमने इसमें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, अल्लाह ताला ने नस्ल का सिलसिला चलाया और इंसान ज़मीन में फैल गए। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिन से बीवियाँ बनाई ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। फिर इस इंसानी ख़ानदान को अल्लाह ने कायनात के ख़ानदान से इंट्रोड्यूस कराया। 8 पॉइंट्स हमने देखे, कायनात में फैली हुई निशानियाँ कि जिसको हम अपने घरों पे अप्लाई करें तो घर पर सुकून बनते हैं। पहली चीज़ उसमें अल्लाह ताला के हुक्म से आसमानों ज़मीन की पैदाइश अमल में आई। तो इसमें हमने ज़िक्र देखा था कि घर में मर्द का किरदार आसमान वाला और बीवी का किरदार ज़मीन वाला होना चाहिए। अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है, बिजली की चमक दिखाता है, इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर कभी गुस्से में शौहर ऊंची गरज भी लें तो कोई बात नहीं, उनकी चमक को नज़र में रखिए कि फिर खैर भी तो उन्हीं की वजह से घर में आती है। फिर तीसरी चीज़, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन अपने हुक्म से कायम की है। इसमें हमने देखा था कि अल्लाह ही की शान है कि एक मर्द और औरत इकट्ठे ज़िंदगी गुजार देते हैं तबीयतों के इख्तलाफ के बावजूद, ये वाकई एक मिरेकल है। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदगी अता की, आसमान और ज़मीन में जो भी हैं उसके बंदे हैं, इसके ताबे फरमान है। अल्लाह ताला ही तख्लीक की इब्तदा करता है, वही इसको दोहराएगा। अल्लाह ताला जब इंसानों को पुकारेंगे तो ज़मीन से सब इंसान निकल आएंगे और आसमानों और ज़मीन में अल्लाह की सिफत सबसे बरतर है। क्या पता चला कि जिस तरह कायनात मुस्लिम है, अगर हम मुस्लिम हो जाएं तो अल्लाह ताला हमारे घरों में भी इंशाल्लाह सुकून देगा। तीसरा पॉइंट था अल्लाह ताला की निशानियों में से है क्या, पांच निशानियां हमने आज के इस सबक में देखी। नंबर एक, इंसान का रात और दिन को सोना, इंसान का रिस्क तलाश करना, रंगों का इख्तलाफ, जुबानों का इख्तलाफ, एक ही जिन से जोड़े बनाना। और निशानियां किन के लिए हैं, तीन किस्म के लोग। नंबर एक, गौर व फिक्र करने वाले, गौर से सुनने वाले और अक़ल वालों के लिए। क्या पता चला कि कुरान पढ़कर सुन के पढ़ा के भी लोग नसीहत नहीं ले पाएंगे जब तक गौर व फिक्र नहीं करेंगे। और आखिर में फिर हमने अपना जायज़ा लेना है, ये सबसे मुश्किल है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब करना। नौ नुक्ते हैं, क्या मेरे दिल को यकीन है। अब एक एक नुक्ता अपने दिल से पूछिएगा। पहला क्या है, अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, अल्लाह ताला ने नस्ल का सिलसिला चलाया और इंसान ज़मीन में फैल गए, अल्लाह ताला ने हमारी जिन्स से बीवियां बनाई ताकि हम इनसे सुकून हासिल करें, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी, अल्लाह ताला के हुक्म से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश अमल में आई, अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाते हैं, बिजली की चमक दिखाते हैं, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन अपने हुक्म से कायम किए, अल्लाह ताला ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी अता करते हैं, आसमान और ज़मीन में जो भी हैं इसके बंदे हैं और ताबे फरमान हैं। इन सब पे अपने दिल को चेक करना है। और जायज़े के सवालात, क्या मैं गौर व फिक्र करने वालों में से हूँ, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। मैंने देखा है कि बहुत कम लोग गौर करते हैं। क्या मैं करीब के सुनने वालों में से हूँ, क्या मैं अक़ल वालों में से हूँ, क्या मैं इस दवाजी रिश्ते को मोहब्बत और सुकून वाला रिश्ता बनाने की कोशिश करती हूँ, आप हैं तो अपने लिए करती हूँ और अगर मर्द है तो वो करता है, क्या मैं अपनी शरीक हयात के लिए राय की कुर्बानी देती हूँ। ये बड़ी मुश्किल होती है, बकरीद पे बकरे कुर्बान करना आसान और अपनी राय छोड़ के शौहर की राय को कबूल कर लेना ये बड़ा मुश्किल है, अल्लाह आसान कर दे अगर तो। क्या मैं अपनी शरीक हयात की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ, क्या मैं अपनी शरीक हयात को दुख देने से बचती हूँ, क्या मैं अपनी शरीक हयात की रज़ा की खातिर अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर देती हूँ, क्या मैं अपने शरीक हयात के घर वालों की केयर करती हूँ और क्या मैं आपस के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ। हो सकता है इन सारे सवालों को, ये जो आखिरी 10 सवाल थे, आपने यस किया हो और हर एक को अपने शौहर ही की कमी दिखी हो। लेकिन याद रखिए एक बात हमेशा जहन में रखें, अल्लाह कभी अजर ज़ाया नहीं करता। ठीक चीज़ पे स्टैंड लें, गलत चीज़ को कभी कबूल ना करें। कामयाब ज़िंदगी का गोरा ना शौहरों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करें और ना उनकी नाराज़गी की परवाह छोड़कर अल्लाह को खुश करें। बैलेंस के साथ जिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुकून देता है। और आखिर में हम क्या करें, अपने घर के माहौल को पुरसकून बनाने की कोशिश करनी है, घर के सुकून के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है और घर पुरसकून बनाने के लिए अल्लाह की किताब को सीखना। बेहतरीन तोहफा जो आप अपनी बेटियों को या नई नई बहुओं को दे सकते हैं, आप उनको कुरान कोर्स में दाखिल करवा दें। और ऐसी गवाहियां मौजूद हैं अल्लाह के हुक्म से कि कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, यानी नाम लिए बगैर, सिर्फ जिसको आप कह लीजिए कि अल्लाह के हुक्म से शुक्राने के तौर पे है। किसी ने एक दफ़ा में कहा, किसी भी जगह दीन का काम शुरू किया हमने, कुछ अरसे के बाद मेरे हस्बैंड और मैं भी वहीं थे, कोई किसी सिलसिले में मीटिंग थी, तो कुछ ब्रदर्स थे जिनके घर के लोग हमारे पास आते थे। तो घरों में बात जाती है, आप यहाँ सुन रही हैं, कोई ना कोई बात अच्छी या बुरी आप जाके करेंगी। तो वो जो ब्रदर थे ना, उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लिया तो कहने लगे कि उसामा साहब, आप बड़ी देर से आए हैं इस शहर में। और फिर सुनाने लग गए कि अगर आप थोड़ा पहले आते तो फलां भी घर नहीं टूटना था, फलां तलाक नहीं होनी थी, फलां रिश्ता नहीं टूटना था। क्यों, कहने का मतलब एक खराज तहसीन था कि आपकी बीवी जिस तरह हमारी खवातीन की तरबियत कर रही है, हमारी बच्चियों को सुलझा रही है, अगर ये 5 साल पहले आप आते तो इस शहर के कई घर बच जाते। तो देखिए, अपना घर बचाएं और अपने बच्चों के बचाएं, अल्लाह ताला आसानी का वाला मामला करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।